ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जैसे रोज बाबा से मिलन मनाए बिगर अच्छा नहीं लगता है, ऐसे ईश्वरीय परिवार से मिलन मनाए बिगर भी अच्छा नहीं लगता है। और यही कारण है कि मधुबन जहां विश्व भर के, भारत भर के बाबा के बच्चों के साथ मिलन होता है, भल व्यक्तिगत रूप से परिचय ना भी हो, मुलाकात ना भी हो, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में ज्ञानी योगी पवित्र आत्माओं का संगठन हर किसी में खुशी भर देता है, उमंग उत्साह भर देता है। हम सब जानते हैं कि हम संगम युग में हैं। बाबा तो साकार मुरलियों में भी कहते हैं, सदा याद रखो हम संगम युगवासी हैं, जिसमें दो तबके में परिवर्तन होते हैं, कलियुग अंत और सतयुग आदि का संधि काल संगम युग कहते हैं। अर्थात शुद्रता का अंत और देवत्व का प्रत्यक्ष होना, ये दो कार्य हम संगम युग में करते हैं। जिसको दूसरे शब्द में बाबा कहते हैं कि 63 जन्मों का उधार चुकाते हैं और 21 जन्मों के लिए जमा करते हैं। मैं समझती हूं कि अब हम सबकी कलयुग से निकलकर संगम युगी पवित्र योगी बनने की जो ब्राह्मण जीवन की यात्रा है, वो अब संपन्न होने जा रही है। एक लंबे काल का पुरुषार्थ, और जिनको लंबा काल नहीं मिला है उनका पूरी लगन और एकाग्रता से किया हुआ पुरुषार्थ स्वयं में अनुभव कराता है कि सचमुच इस पुरानी दुनिया में, पुराने शरीर में रहते हुए मैं आत्मा नई बन रही हूं, सतु प्रधान बन रही। ये खुद को खुद से महसूस आती है, क्योंकि बाबा ने भी हम बच्चों के पीछे सच्चा ब्राह्मण, दुनिया के हिसाब से सच्चा मानव क्योंकि अक्सर दुनिया में लोग कहते हैं कि मानव मानव बने वो भी बहुत है। तो एक सच्चा मानव बनने का जो पुरुषार्थ है बाबा ने भी बहुत कराया। जैसे एक मकान बनाने के लिए स्लैब भरते हैं, प्लेट्स लगाते हैं, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर लगाते हैं, कितने खंभे लगाते हैं और उसमें पूरा माल भरते हैं और काफी समय तक उसको रखते हैं तो धीरे धीरे वो सीमेंट रेत का जो माल है वो फिक्स हो जाता है। तो बाबा ने भी हमें भक्ति के फल के रूप में ज्ञान और योग का खजाना दिया। आप समान मास्टर ज्ञान सागर बनाया, बाबा का सृष्टि पर आना और आते ही ज्ञान देना शुरू हुआ है। लगभग 80 वर्षों में हमारे जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं है जिसके बारे में बाबा ने ज्ञान ना दिया। यथार्थ समझ, सत्य ज्ञान संपूर्ण रूप से बाबा ने हमें दिया। जो भक्ति में नहीं है वहां लगन है, इच्छा है पवित्र बनने की, माया जीत बनने की, दुखमयी कर्म बंधनों से छूटने की इच्छा है पर सत्य विचार नहीं, सत्य ज्ञान नहीं। वो ज्ञान सच में बाबा ने भर भर कर दिया। जो भक्ति में गाते हैं कि भगवान जब देते हैं तो कैसा देते हैं, छप्पर फाड़ के देते हैं। बेहद का बाप सागर भंडार प्रैक्टिकल में महसूस हम करते हैं कि बाबा ने देने में कोई कमी नहीं रखी। न सिर्फ ज्ञान दिया, प्यार दिया, पालना दी, मदद की और उस ज्ञान योग के खजाने को श्रेष्ठ धारणाओं के रूप में, श्रेष्ठ संस्कारों के रूप में फिक्स करने के लिए बाबा ने कितना सपोर्टिंग स्ट्रक्चर लगाया। एक खंभा ईश्वरीय परिवार का संग बहुत बड़ी मदद है। एक अकेला संपूर्ण नहीं बन सकता है, वो द्वापर युग से देखा कि घर बार छोड़कर कितने मुक्ति के लिए, प्रभु प्राप्ति के लिए जंगलों में गए, पर एक अकेला संपूर्ण नहीं बन सकता है। बाबा ने ईश्वरीय परिवार का संग हमें दिया, ये हमारा सौभाग्य कि रोज अमृत वेले उठते ही मन की आंख से बाबा को देखते, मिलन मनाते और फिर प्रैक्टिकली सुबह सुबह इन आंखों से पवित्र योगी ब्राह्मण आत्माओं को देखते और उनके संग हम पढ़ाई करते। कितने भी वैरायटी हो, कितने भी नंबरवार पुरुषार्थ हो, पर आज तक इतने सालों के बाद भी हम महसूस करते हैं कि हमें परिवार की जरूरत है। अपनी स्थिति बनाने के लिए मुझे जरूरत है। जैसे आज की मुरली में बाबा ने कहा कि प्रजा बनाते हो आप तो राजा रानी बनेंगे ना, वो राजा रानी की स्टेज माना, खुद की शक्ति से, खुद की समझ से, खुद की लगन से सभी धारणाओं में सेल्फ डिपेंडेंट बनना, ये है राजापन की निशानी। जो आत्मा राजा बनने वाली है वो अपनी ताकत से, समझ से इस ईश्वरीय जीवन के नियम मर्यादा श्रीमत पर चलेगी, पुरुषार्थ में चलेगी। और वो स्थिति बनाने में हम ईश्वरीय परिवार का महत्व कम नहीं कर सकते। आज हमारे शहर में सेंटर ना हो, एक घड़ी आप सोचिए, हमारे पुरुषार्थ में, उमंग उत्साह में, लगन में असर तो आता है ना, फर्क पड़ जाता है। आज सेंटर है, काफी भाई बहने आते हैं और हम संग संग रोज पढ़ते हैं, इससे स्थिति बनती जाती, स्वरूप बनता जाता, दृढ़ता होती जाती। आत्मा शक्तिशाली बनती इन धारणाओं में। दूसरा स्ट्रक्चर बाबा ने जो लगाया, ईश्वरीय परिवार का संग और संग संग पढ़ाई करना। दूसरा निमित्त आत्माएं, जहां भी जो निमित्त है उन आत्माओं के द्वारा भी हमें बहुत पालना मिलती, मार्गदर्शन मिलता है। आज सेंटर में समर्पित ना हो, भल बाबा कहते भी है आपस में मिलकर क्लास चलाओ, पर उसमें भी तो कोई निमित्त बनता है ना, और उसमें भी पूर्ण रूप से समर्पित यज्ञ निवासी जीवन जीने वाली निमित्त आत्माओं से हमें और अधिक शक्ति, मार्गदर्शन मिलता है। बाबा कहते हैं ना, ये सारी सप्लाई लाइन है, जो भगवान से पालना मिलनी है ये सप्लाई लाइन है, और इसलिए जिन निमित्त आत्माओं से हमारा संबंध ठीक है, एक दो के लिए हमें शुभावना है, तो हम बहुत एम्पावर होते हैं। तीसरा मधुबन, आज इतना जो बेहद का घर बाबा ने बनाया, पूरी व्यवस्था बनाई, बल हम सबके तन मन धन के सहयोग से, पर पूरा प्रैक्टिकल ये प्लानिंग तो बाबा ने शुरू से जो मधुबन रचा, यज्ञ रचा, उससे हमें कितनी पालना मिलती। एक ऐसा स्थान जहां विश्व भर के बाबा के बच्चों से संगठित होकर हम पढ़ते हैं, विचारों की लेनदेन करते हैं। कितना भी आप कहो टीवी में बाबा को देखते हैं, अच्छी बात है, पर मधुबन आने से बाबा मिलन के निमित्त हमें इस भूमि की शक्ति, हमारे बड़े, हमारी दादियां दीदियां, हमारे बड़े भाई, जो भी हमारे सीनियर्स हैं, उनको आते जाते, क्लास कराते, मुरली सुनाते देखते हैं, तो भी हम फिर स्व में स्थित होते, फिर आत्मभिमानी बनते हैं, अंतर्मुखी बनते हैं, बाबा याद आता है। और चौथा जो बाबा ने स्ट्रक्चर लगाया वो है कि आज तक भी 69 से लेकर आज तक भी अव्यक्त बाप दादा का आना और हमें पालना देना। हर सीजन में बाबा नया नया उमंग उत्साह भर के, प्यार करके हमें और बल भरते पुरुषार्थ करने के लिए, क्योंकि जो हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं वो साधारण नहीं है, बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है, भक्ति में सोच भी नहीं सकते हैं, इतना ऊंचा आध्यात्मिक पुरुषार्थी बनना। उन धर्मात्माओं का, महात्माओं का तो एक स्पेशल रोल है, पर हम तो साधारण कलयुगी आत्मा से सतयुगी आत्मा बन रहे हैं, ये बहुत ऊंचा पुरुषार्थ। और प्रति वर्ष हर सीजन में नई नई बातें बाबा ने बताई है, और आज तक बाबा हम बच्चों को पालना दे रहे हैं। बाबा भी समझते हैं कि ये कोई सेकंड की बात नहीं है, लंबे पुरुषार्थ की बात है, आमूल परिवर्तन की बात है, आत्मा को टोटल चेंज हो रहा है, जीरो से फुल बनना है। इन सबका लाभ लेते लेते मैं समझती हूं कि अब एक पुरुषार्थी जीवन की यात्रा हमारी संपन्न होने जा रही। अपने आप में ये महसूस, भल रोज क्लास करें, योग करें, सेवा करें, चिंतन करें, चिंतन का लेन देन करें, पर जैसे हम देख रहे हैं कि अभी हमारे बड़े अपने आप में संपूर्ण बन गए, सिर्फ हमें पालना देने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए वो बैठ के प्यार से पालना देते। उनका अपना व्यक्तिगत कोई मेहनत पुरुषार्थ बाकी नहीं रहा, कुछ 5-10% समय के साथ कंप्लीट होती, वो समय के साथ कंप्लीट होती, पर बाकी सब जैसे अंदर से बन गए हैं। तो ब्राह्मण जीवन की मेहनत की कहो, पुरुषार्थ की कहो, युद्ध की कहो, नंबरवार कहो, ये सब चीजें अब समाप्त। अब हमें अपनी स्थिति का एक आनंद और सुख, मैं समझती हूं सफल ब्राह्मण जीवन का निचोड़ और सार यही है कि अब हमें अपनी अलौकिकता में, अपनी रूहानियत में आनंद, और जहां आनंद आएगा वहां ही आप मगन हो सके। आप देखो जिसमें आपकी रुचि है वहां एकाग्रता होती, इसलिए ब्राह्मण जीवन की अब फीलिंग ये होनी चाहिए हम सब में। अंदर में कोई नीरसता नहीं, सिर्फ ब्राह्मण जीवन खींचने की बात रही, सिर्फ संगम बिताने की बात नहीं, लेकिन स्मृति का आनंद, अपनी जागृत आत्मस्थिति का आनंद। और आज वही चीज बाबा ने कही कि प्यार, बस एकाग्र होना है, बिंदु बनना है, बीज होना है, डिटैच होना है, लाइट होना है, एक ही पुरुषार्थ कि मेरा बाबा से जिगरी प्यार, सत्य मिल जाने के बाद उसी में भावना, श्रद्धा और समर्पण, अब वो चीज चाहिए। जो महत्व की बात थी सत्य खोजना, वो तो खुद भगवान ने आकर हमें बता दी। सारी भक्ति की मेहनत सत्य को पाने की, यही हम ब्राह्मणों का सौभाग्य कि सत्य स्वयं हमारे आगे प्रकट हुआ है। और अगर ये परख और निश्चय है कि साक्षात भगवान मिला है, परम सत्य मिला है, ये रियलाइजेशन ही मगन बना देते हैं। प्राप्ति हो चुकी है, भक्ति में मेहनत करके कुछ प्राप्त करते हैं, यहां प्राप्ति हो चुकी है, उसे बार बार रोज रिवाइज करना है। कहते हैं कई बार बहुत कुछ मिल जाता है पर प्राप्ति का आनंद ही नहीं होता है इंसान। भौतिकता ऐसी चीज है कि प्राप्त करते जाओ उतने ही आत्मा भूखी होती है और इच्छाएं तृष्णाएं लालसा बढ़ती, पर आध्यात्मिकता वो चीज नहीं। इसलिए अब बार बार महसूसता खुद खुद को कराना है। साकार मुरलियों में हम देखते हैं ना वही चीज बाबा में, नशा। बाबा कितनी बाबा से बात करते, आप हमें क्या से क्या बना रहे। तो अब बाबा की याद में, बाबा से व्यक्तिगत संबंध में कोई इच्छाएं नहीं, कोई कंप्लेन नहीं, अब कोई असंतोष अंदर रहे। समय अतीन्द्रिय आनंद का है, सुख की महसूसता का है, वही चीज हमें मगन बनाएगी। इतना भगवान दें और उसके बाद भी हमारे मन से कंप्लेन उठती रहे, बाबा ने मेरा ये काम नहीं किया, बाबा ने मेरा वो नहीं किया, बाबा ने यहां मुझे मदद नहीं की, नहीं। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, क्या क्या मिला है, शुक्रिया बाबा, ये दिल से निकले। क्या नहीं बाबा ने दिया, क्या नहीं दादियों ने हमें दिया, क्या नहीं हमारे बड़ों ने हमारे पीछे मेहनत की। अब शुक्रिया, आभार की महसूसता, तो खुशी आनंद। और अब तब हमारी आगे की यात्रा, कि अब जो हमारा समय है वो संगम से सतयुग के ओर की यात्रा का है। कलयुग से संगम में आने का पूरा हो जाना चाहिए। संगम का एक क्षण बीता, हम एक क्षण सतयुग के नजदीक आए। अब ये यात्रा है और इसलिए संगम से सतयुग की यात्रा माना हर क्षण अपने आप में नेचुरल सतयुगी संस्कारों का अनुभव बढ़ता जाना है ना। जैसे व्यक्ति को यात्रा में कितना भी कोई तकलीफ हुई हो, पर जैसे ही उनकी मंजिल नजदीक आती है वो यात्रा के कष्ट भूलकर घर पहुंचने के आनंद में आ जाता है। पिछली पहली मुरली में बाबा ने, इस सीजन की पहली मुरली में कितनी बार बाबा ने कहा अब हमारा राज्य आना है, सतयुगी दुनिया जिसमें हम ही होंगे, है ना। इंसान जीवन में सोचता है ना कि क्यों सब अच्छे नहीं मिलते हैं, क्यों सब सुख देने वाले नहीं मिलते। अगर मेरे घर में ऐसा हो, मेरे परिवार में ऐसा हो, उसी आशा से इंसान कितने देह संबंधों में बंधता जाता है, क्योंकि सूक्ष्म में इच्छा क्या होती कि मुझे समझने वाला, सुख देने वाला, प्यार करने वाला, साथ देने वाला, शक्ति देने वाले सब मुझे मिले। दुख तो केवल इसी बात का महसूस होता है ना जब कोई ऐसा नहीं मिलता है। तो सचमुच अब ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहां सब सतोप्रधान, सब दिव्य, सब सुख देने वाले, प्रेम करने वाले, अपने अपने वर्ग और अपने अपने स्थान में संतुष्ट और सुखी रहने वालों की दुनिया। आप सबको याद होगा जब ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर ए बेटर वर्ल्ड प्रोजेक्ट चला था 87-89 के आसपास, तो लोगों को वर्ग वाइज वही वर्कशॉप कराते थे ना कि विजन क्रिएट करो, आप कैसा संसार चाहते। हर कोई लिखता था कि ऐसा सुखमय, श्रेष्ठ, स्वस्थ, सभ्य, सुसंस्कारी, संपन्न संसार। और सचमुच अब वो मोड़ पर हम हैं जहां हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं। तो अब सतयुगी संस्कार हमारे में दिखने चाहिए। वो सतयुगी संस्कारों का अनुभव हमें हो, पुरुषार्थ, युद्ध, मेहनत, वैरायटी, नंबरवार, हिसाब किताब, ये सब चीजें खत्म। वो हमारी कोई बातें सोल हुई नहीं हुई, अब मुझे उस पर माइंड ही नहीं करना है। टाइम अब इस तरफ जाने का। इंसान जीवन में कब तक वो बातें सोचता रहेगा कि ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। उसकी भी तो एक लिमिट हमें करनी पड़ेगी ना कि अब इसको फुल स्टॉप। संसार व्यक्ति की इच्छा अनुसार नहीं चलता है। हमें जीवन में सबके विचारों का समावेश करना होता है, औरों की इच्छाओं को भी मान देना होता है। इसलिए अब वो चीजें पूरी, ये दृढ़ता हमें ही करनी होगी कि अब मुझे ये चीजें नहीं सोचनी। मेहनत नहीं, युद्ध नहीं, पुरुषार्थ ये चीज नहीं, रिजल्ट चाहिए, अब विजय चाहिए। सतयुगी संस्कार विजय है, सफलता है, अचीवमेंट है, वो अब हमें महसूस, उस अनुभूति में रहना है। बनना है देवता नहीं, मैं हूं ही। इस पुराने शरीर के अंदर नई सतयुगी दिव्य आत्मा। अब हमें अपने चिंतन को और आगे बढ़ाना है और सतयुगी संस्कार कौन से हैं? हम सब जानते हैं कि जहां अपार संपत्ति है, बाबा कहते हैं ना, प्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में, सर्व प्राप्ति, संपूर्ण प्राप्ति, विपुल प्राप्ति, भरपूर प्राप्ति, अपार संपत्ति साधन, अपार सौंदर्य, नेचुरल, बाबा कहते हैं ब्यूटीफुल। अभी कुरूपता में विविधता है, वहां सौंदर्य में विविधता होगी, कोई टेढ़ा बांका नहीं, हर कोई सेंसिबल, माना अपार सौंदर्य, अपार संपत्ति और परम सत्ता, विश्व के मालिक। अक्सर लोग सोचते हैं ये तीनों चीजें स्पॉइल करती, व्यक्ति को बिगाड़ती, परंतु सतयुग की वो विशेषता है कि वहां ये सब कुछ होते हुए आत्मा निर्विकारी। तो ये चीज मुझे अपने में अब महसूस करनी है कि कोई भी चीज मुझे स्पॉइल नहीं करे। जो आज बाबा ने कहा कि होते हुए वैराग्य, साधन होते हुए वैराग्य, जरूरी उपयोग करना, सूक्ष्म में भी आत्मा कहीं भी अट्रैक्ट नहीं होंगे और वही सदा हर्षित रह सकती। बाबा का है महावाक्य, जो आकर्षित नहीं होता है वो सदा हर्षित रहता है। जहां हम कहीं खींचे, आकर्षित हुए, आसक्त हुए, वहां हमारी यूनिकनेस खत्म होती, हम कॉमन बन जाते। तो ये व्यक्तिगत पुरुषार्थ कि कितने भी पोजीशन पावर वाले हम बन जाए, संगम युग में भी सेवा का रिटर्न, साधन और सुविधाएं कितने मिल जाए, और सचमुच हम बहुत अच्छी आत्मा बन जाए, तो भी निमित्त भाव, डिटैच, निरंकारी, क्योंकि लंबे समय का ब्राह्मण देवता बनेगा। जैसे साइकिल में तमो से रजो, रजो से सतो हम बनते न। ब्रह्मचर्य पालन किया हम शूद्र से वैश्य स्थिति में आए। वैश्य स्थिति की दो कमजोरियां लोभ और मोह, दुनिया में भी आप देखना ये दो चीज की कमजोरी वैश्यों में होगी, लोभ और मोह। जब लोभ और मोह पर विजय प्राप्त करते तो वैश्य से क्षत्रिय बनते, और क्षत्रिय स्थिति की दो कमियां अहंकार और गुस्सा क्रोध। जब उस पर विजय पाते हैं तब ब्राह्मण बनते, और ऐसे ब्राह्मणत्व में जो अंत तक चलेगा वो देवता बनेगा, तब वो देवता इज स्टेज नेचुरल प्योर नेचुरल दिव्य नेचुरल भरपूर आत्मा। फिर वहां दिव्य बुद्धि दैवी मत प्रेम की भाषा आत्मा कर्मेंद्रिय जीत प्रकृति जीत जगत जीत, ये सतयुगी संस्कार। विजयी पन दातापन जो भरपूर है वो अपने आप ओवरफ्लो होता है, दे सकेगा। और दिव्यता शालीनता इसलिए अब वो दिखना चाहिए, हम उसी पर अब फोकस हो जाए। बाबा कहते हैं कल पहले तुम ही बने थे और तुम्हें ही बनना। वो अपनी अंदर की दिव्यता में स्थिर रहना, दृढ़ रहना, उसी आनंद में रहना। तो सुख का ही महसूसता होगी। इसलिए जैसे शूद्र से ब्राह्मण बने और हम एक धक से उस दुनिया से निकल गए, अब उतनी ही दृढ़ता से फरिश्ता सो देवता बाप समान संपन्न संपूर्ण अव्यक्त कर्मातीत। ये चार चीज फरिश्तेपन में महसूस होती जाए। तो खुशी आनंद अतीन्द्रिय सुख तब इस ब्राह्मण जीवन में थकेंगे नहीं, उमंग उत्साह बना रहेगा। क्यों आज दादियों के मुख से पुरानों के मुख से बड़ों के मुख से हम कभी नहीं सुनते हैं ना कि कब विनाश, क्योंकि अंदर आत्मा जो कर रही है उसमें आनंद आ रहा है। जो हम कर रहे हैं उसमें आनंद, अगर उसमें आनंद नहीं तो एकाग्र नहीं, मेहनत खींचने की महसूसता। तो जो बाबा की अनुभूतियां अंतिम समय की, क्या मैं जाकर मिचनू कृष्ण बनूंगा, अब जल्दी ही हम उस स्थिति पर जाएंगे। इसलिए वो पैराग्राफ पिछली मुरली का बार बार पढ़ना है, जिसमें बाबा ने कितनी बार कहा हमारी दुनिया आ रही है, सतयुगी दुनिया आप सामने खड़ी, हम ही वहां होंगे। वो आनंद, वो सुख। तो पांच अभ्यास हम करेंगे। अब हमारी रूरिहान, हमारा चिंतन, हमारी अनुभूति क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। तो सभी खड़े हो जाएं। आप कब से बैठे हैं, थोड़ा खड़े होके अभ्यास करेंगे। पहला अभ्यास, स्वयं के लिए कौन सा संकल्प और दृढ़ता करनी है। राइट हैंड आगे करें, मेरा स्वयं से ये दृढ़ता है बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनने का जिगरी पुरुषार्थ पूरी एकाग्रता और लगन से ये धुन मुझे बाबा जैसा बनना है। हाथ नीचे, ब्राह्मण से क्वालिटी ब्राह्मण बनना फरिश्ता बनना है। अब मेरा पुरुषार्थ कर्म योगी फरिश्ते से कर्मातीत फरिश्ता बनना। वतन में प्यारे बाप दादा हमारा इंतजार कर रहे हैं, इस ब्राह्मण जीवन के। सभी स्पर्धाओं, हिसाब किताब, इन सब से न्यारा बनकर संपूर्ण अव्यक्त बनने के प्रति एकाग्र, अब यही सहयोग बाबा को हमसे चाहिए। अब आप खुद अपने मनोभावों से बाबा को बताएं अब आप खुद बाबा को बताएं बाप समान बनने के लिए आप क्या करेंगे। दूसरा अभ्यास, दो दो की जोड़ी बन जाए और आमने सामने खड़े हो जाए, भाई भाइयों के साथ, बहने बहनों के साथ। राइट हैंड मिलाएं, मेरा हर ब्राह्मण आत्मा के प्रति ऊंची सम्मान की नजर रहेगी। और मेरी ये दृढ़ता है कि बाप समान बनने के हर संभव पुरुषार्थ में और विश्व कल्याण के हर सेवा कार्य में मेरा सदा सहयोग रहेगा। हमें मिलकर संपन्न बनना है, विश्व कल्याण का कार्य संपन्न करना है। बाबा के सामने हो जाइए। और खुद अपने मन से बाबा को बताइए, हम अलौकिक परिवार में कैसे चलेंगे। शुभ भावना सबके लिए कैसी रखेंगे। खुद बाबा को बताइए। तीसरा अभ्यास, अपनी अपनी लाइन में भाई भाइयों के साथ, बहने बहनों के साथ हाथ पकड़े। और हाथ पकड़कर ऊपर उठाएं। मेरा ईश्वरीय संगठन के प्रति यही लक्ष्य रहेगा कि हमें संगठित होकर मिलकर श्रीमत पर एकमत होकर विश्व के आगे बाबा को प्रत्यक्ष करना है। हाथ नीचे। खुद बाबा को बताइए, संगठन में कैसे चलेंगे। प्यारे बाबा ने हमें विश्व के आगे प्रत्यक्ष किया। अब मुझे बाप समान कर्म गुण और वृत्ति से बाबा को प्रत्यक्ष करना है। बैठ जाए। चौथा अभ्यास। सतयुग के नजारे देखना, अब हमारी जीवन नैया सतयुग के किनारे पहुंच रही है। सामने पुरुषोत्तम चोला तैयार है। लक्ष्य प्राप्ति, मंजिल पर पहुंचने का आनंद, जन्म जन्मांतर का सपना साकार हो रहा है। सुख ही सुख, आनंद ही आनंद, प्यार ही प्यार, मैं ही सतयुग की देवात्मा, ये सत्य वास्तविकता बनने जा रहा है। स्वर्णिम सवेरा जल्दी ही होने वाला है।
और पांचवा अभ्यास, प्रभु मिलन की अंतिम घड़ियां, प्रभु मिलन की शेष घड़ियां, सुखद भरपूरता संतुष्टता प्रसन्नता अनहद का आनंद, दिव्यता
दी जिन भाई बहनों ने सौगात